ये 10वां श्लोक है 7वें अध्याय का। यस प्रभु।
पढ़ रहा जिसमें लिखा है प्रभुपाद जी, वो ड्यूरेशन ऑफ मैन लाइफ इज आल्सो ड्यू टू कृष्णा, इसमें
यस
शायद हिंदी में पता
आयु
नहीं।
भी ये लिखा हुआ।
हाँ, तो जैसे ये भगवान की स्वरूप की व्यक्ति कर्मों के हिसाब से उसका ड्यूरेशन होता
बहुत
है।
अच्छा प्रश्न है कि ये जो इंसान का जीवन है ये भगवान के द्वारा है, तो ये उसके कर्मों के द्वारा है कि भगवान के द्वारा है। देखिए, कर्म एक जड़ वस्तु है। अगर मैंने मान लीजिए किसी को गाली दी, तो यह कर्म एक जड़ वस्तु है। कर्म मुझे कुछ नहीं दे सकता। कर्मणा दैव नेत्रेण, दैव मतलब भगवान। तो कर्म के अनुसार अगर मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसको प्राप्त कराने वाला एक सचेत व्यक्ति है, वो है भगवान। समझ में आ रहा है? कर्म अपने आप में हमें कुछ नहीं दे सकता। भाई जैसे आपके यहाँ पे आपके अंडर में 27 लोग काम कर रहे हैं, तो वो कुछ काम कर रहे हैं, तो काम करने मात्र से प्रमोशन हो जाता है, या काम आप देखते हो और प्रसन्न होते हो फिर प्रमोशन देते हो? क्या उत्तर है? हाँ ना, कुछ तो बोलिए।
काम को देखते हैं हम।
काम देखता है तो आप देव हो गए ना एक तरह से। आप देख रहे हो कि उन्हें कैसे काम किया है, काम के अवसर को प्रमोशन देते हो। तो उसी प्रकार से केवल कार्य करने मात्र से प्रमोशन तो नहीं हो जाएगा, ये बात समझ रहे हैं। कर्म अपने आप में जड़ वस्तु है, ठीक है? ये अच्छा प्रश्न है। ओके, देखिए यही होता है। अगर हम स्वयं पढ़ें तो इस प्रकार का हम विचार विमर्श नहीं करते, लेकिन जब हम आपस में चर्चा करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिससे सभी को लाभ होता है। ठीक है, मेरे पीछे आप बोलिएगा, एक भक्त बोलेंगे संस्कृत में। श्लोक क्रमांक 10 अध्याय 7। बीजं मां सर्वभूतानां,
बीजं मां सर्वभूतानां,
विद्धि पार्थ सनातनम्,
विद्धि पार्थ सनातनम्,
बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि,
बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि,
तेजस तेजस्विनामहम्।
तेजस तेजस्विनामहम्।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। सभी जीवों का आदि बीज, आदि स्रोत तुम तो मुझको जानो, लेकिन कैसा बीज? सनातन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी को प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में गर्भोदकचाय विष्णु के संबंध में भी कहा गया है। एतान नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम्। ये जितने भी अवतार हैं इनका निधान मतलब जितने भी अवतार हैं उनका स्रोत भगवान है, और उन्हीं में भगवान उन्हीं भगवान गर्भोदकशाय विष्णु में ये प्रवेश करते हैं। निधानम बीजम अव्ययम्, ये अव्यय बीज है। अव्यय बीज का अर्थ क्या है? जैसे इस जगत में हम देखते हैं कि एक बीज जब जमीन में आरोपित किया जाता है, आरोपित मतलब बोया जाता है, तो जब बीज से पेड़ उगता है तो क्या बीज की सत्ता नष्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती? हो जाती है। लेकिन वहां क्या बोला जा रहा है? बीजम अव्ययम्। भगवान से सारे अवतार आते हैं, पूरा जगत आता है, लेकिन भगवान की सत्ता नष्ट नहीं होती। क्या यही बात हम यहाँ देख रहे हैं? बीजम सनातनम, इस जगत में जितने भी जीव हैं सारी वस्तुएं हैं भगवान से आई हैं। इस दृष्टि से भगवान इसके स्रोत हैं, बीज हैं, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान से आई हैं तो भगवान की सत्ता, उनका अस्तित्व है, वह नष्ट हो गया। समझ रहे हैं इस बात को? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति नहीं दिखाई पड़ती आपको? भाई जगत में कोई वस्तु किसी वस्तु को प्रकट करती है, कुछ समय के बाद जो जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो समाप्त हो जाता है, स्पेशली बीज के संबंध में देखें। लेकिन भगवान इस प्रकार के बीज नहीं है, सनातन बीज हैं, अर्थात अभी भी वो हैं और आगे भी वह रहेंगे। बुद्धिर बुद्धि मतामस्मी, अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, बड़ा स्पष्ट है। और जो तेजस्वी हैं उनका तेज मैं हूं। पढ़ते हैं आगे। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। यदि हाँ पुत्र, प्रथा पुत्र कौन है? अर्जुन। प्रथा मतलब कुंती माता, हाँ, इसीलिए इनको पार्थ कहा जाता है। गीता भूषण टीका। यह जानो कि सभी चराचर प्राणियों का मैं एकमात्र नित्य बीज हूं, और ऐसा नहीं है कि प्रति व्यक्ति में मैं भिन्न हूं या अनित्य हूं। समझ में आई लाने? चराचर मतलब क्या हुआ? चर अचर। चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब चलने वाले नहीं। उन सभी का स्रोत कौन है? भगवान है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान ये प्रश्न कल आ रहा था कि क्या सुअर के हृदय में भी परमात्मा है? यस हाँ, तो यस बोल रहे हैं, तो सत्य बात है। तो यहाँ पे यही बात समझना चाहिए कि सुअर के हृदय में जो परमात्मा है और वो जो मेरे हृदय में परमात्मा है, क्या उसमें कोई भेद है? नहीं है, सभी जीवों के जो बीज है वो भगवान ही है। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान समाप्त हो जाते हैं, बस स्पष्ट बात है, अनित्य है, अनित्य नहीं है। नोट, भगवान सभी वस्तु में व्याप्त रहते हुए भी एक ही रहते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। जैसे सूर्य आकाश में रहता है लेकिन विभिन्न जलों में, जलों के आगार में, जलों का आगार मतलब कुंभ में, मतलब घट घट घड़े में उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो वह रिफ्लेक्शन जो है वह परमात्मा के रूप में आपको अपने आप को विस्तारित करते हैं, फिर भी इनकी सूर्य की समान स्थिति रहती है। आप ये नहीं कह सकते जो विभिन्न विभिन्न प्रतिबिंब दिख रहे हैं वह अलग दिख रहे हैं। जैसे महाराज समझा रहे थे कि जैसे प्राइम मिनिस्टर इस समय स्पीच दे रहे हैं, तो विभिन्न टेलीविजनों में प्राइम मिनिस्टर की ही तो फोटो दिखाई पड़ती है कि नहीं? अब प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली में या कहीं पे भी बैठे हों, लेकिन क्या कह सकते हैं, रेडियो जो मैसेज जो भी सिग्नल भेज करके जो चित्रपटल है उस पर भी तो प्राइम मिनिस्टर की बात सुनते हैं, तो वह भी एक दृष्टि से वह भी प्राइम मिनिस्टर से अभिन्न है। तो भगवान अपने आप को परमात्मा रूप में विस्तारित करते हैं सभी के हृदय में, और सभी के हृदय में परमात्मा वही है। अब अगर ये सूत्र हमको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन दिक्कत यह कि मुझको, मैं आपकी बात नहीं करता, मुझको ये सूत्र समझ में नहीं आता। सकल सम्मान कोरे ते शक्ति देहो नाथ जता जता तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता। जीवेर सम्मान कैले कृष्णेर अधिष्ठान, अगर सभी जीवों के हृदय में भगवान है, उनको देख करके सभी जीवों का सम्मान करेंगे तो हम अपराधों से मुक्त हो जाएंगे और नाम में रुचि प्राप्त होगी। नाम का सेमिनार समाप्त, कोई और सेमिनार की आवश्यकता नहीं। सकले सम्मान कोरे ते शक्ति देहो नाथ, ये शक्ति दीजिए भगवान, गुरु महाराज से प्रार्थना करते, शक्ति दीजिए कि मैं सभी को सम्मान कर सकूं, क्योंकि हम भेद देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप मुझसे नीचे हैं, इसलिए तो मैं अपराध करता हूं। किसी के प्रति अपराध करने के पहले मूलभूत बात ये है कि हम ये समझेंगे कि वो व्यक्ति मुझसे हीन है कि नहीं? कुछ सुनाई नहीं पड़ा, थोड़ा माइक के दूर बोलिएगा।
मल्लेच्छ और यवन को भी हम सम्मान की दृष्टि से देखेंगे।
अभी इनका प्रश्न है कि जो मल्लेच्छ और यवन है, क्या उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? हाँ, क्योंकि उनके हृदय में भी भगवान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तने शुनि चैव शपाके चाह पंडिता समदर्शिन। जैसे आप देखो यहाँ पे भगवान का विग्रह है, तो यहाँ भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते हमको? दिखते हैं, हाँ भगवान है, इनका प्रति अपराध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। हाँ, लेकिन कम से कम यहां से शुरू करें, भगवान जब मंदिर में दिखते हैं कम से कम वहां से शुरू करें, फिर धीरे धीरे करके सबके हृदय में देख पाए और सम्मान कर सके, तब हमारे अपराध नष्ट होंगे। ये इम्पॉसिबल लगता है, ऐसा इम्पॉसिबल होता तो भगवान फिर बोलते ही क्यों? भक्ति करते करते फिर हम धीरे धीरे प्रगति करते हुए समझते हैं। जैसे इसको प्रैक्टिकल लेवल में कहा जाए, कम से कम मध्यम लेवल पे हमें आना चाहिए, जहां हम भगवान से प्रेम करें, भक्तों से मैत्री करें, जो लोग मासूम हैं उनको हम प्रेम प्रचार करें, और जो द्वेषी हैं उनसे द्वेष न करें, उनकी उपेक्षा करें। तो इस प्रकार से हम द्वेष से मुक्त हो रहे हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहले लेवल पे हम भगवान को देख रहे हैं विग्रह में, कनिष्ठ के लेवल, और बाकी लोग किसी से राग है, किसी से द्वेष है। ये भक्त की भक्ति की बहुत अच्छी अवस्था नहीं है, लेकिन शुरुआत की अवस्था है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं तो भी हम द्वेष से मुक्त हो रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम इससे अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ने वाले, इसलिए जल्दी से समझे तभी आगे बढ़ेंगे हम। भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, भक्तों से मैत्री करना, अर्थात रोज रोज भक्तों से झगड़ा करना। मैत्री का मतलब तो यही होता है ना? नहीं, भक्तों से मित्रता करना। अब मित्रता का अर्थ है ना उनसे कभी बात करना, ना उनसे कभी प्रसाद ग्रहण करना, ना कोई गिफ्ट देना, ये तो होता है ना मित्र का। मित्रता का अर्थ है जो छह प्रकार के संग होते हैं, जिसमें हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, प्रसाद देते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। वो देहंता परस्परम, तो ये हुआ, तो इससे द्वेष नष्ट हुआ ना भगवान के भक्तों के प्रति, ये मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। अगर भक्तों के प्रति भावना है तो हम फिर निम्न, किसी भी भक्त के प्रति भावना है तो निम्न स्तर पे, मध्यम स्तर पे नहीं है। अब उत्तम की बात छोड़िए, मध्यम पे तो आना शुरू करें और उसके बाद जो मासूम है उनको प्रचार करना। अगर हम किसी को प्रचार नहीं कर रहे हैं जो भगवान के बारे में नहीं जानता और हम स्वयं जानते हैं, तो हमारा द्वेष उसके प्रति प्रस्तुत रहा। जैसे मानो आपका भाई कोरोना वायरस से पीड़ित है और कदाचित आपके पास दवा है, तब कहेंगे मैं इतना तैयार नहीं हुआ हूं कि मैं उसको दवा दूं। जब ये बात थोड़ी समझ में आएगी तब अपनी योग्यता अयोग्यता के बारे में आप विचार नहीं करेंगे। मैं इस वायरस से एक शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, क्या बात स्वीकार करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको वायरस देता दे सकता है जिसे खुद ही पता ना हो कि वो बीमार है? मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान पूर्वक, कैन अ कोरोना वायरस बी गिवन टू यू बाय अ पर्सन हु डज नॉट इवन नो ही हैज वायरस? इज यू आर सेइंग नो, आई थिंक यू आर नॉट अपडेटेड अबाउट द इंफॉर्मेशन। इट इज ट्रू, अ पर्सन कैन गिव यू अ वायरस इवन इफ ही डज नॉट नो दैट ही हैज अ वायरस। Even if the symptoms of virus are not manifested within his body, मेरी बातें शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो बुद्धिमान है बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, वो मेरी बातों को समझ पाएगा। तो अब उसी तरह से कोई कहे कि आप लोग भक्त हो गए हैं, कौन भक्त हाथ खड़ा करेगा कि आप भक्त बन गए हो? कोई नहीं खड़ा करेगा। लेकिन आप देखें, हमको नहीं लगता कि हम भक्त बने हैं, स्वाभाविक से बात है। लेकिन अद्भुत बात है कि जब हम प्रीचिंग करते हैं तो लोग भक्त बनना चालू कर देते हैं। एकदम सिमिलर बात है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप अगर सोचते हैं कि जब मेरे शरीर में भक्ति के अष्ट सात्विक विकार प्रकट होंगे, वायरस प्रकट होगा, तब मैं लोगों को प्रचारित करूंगा, ये गलत है। तो फैलेगा कैसे भाई? अगर अपने को क्वारंटाइन कर लोगे तो फैलेगा नहीं, होस्ट मिलेंगे नहीं। तो हमको भी वायरस बनना है, वायरस का होस्ट बना करके दूसरों को वायरस देना है। और अद्भुत बात यह है कि ये वायरस हम लोग तो टेलीग्राम से भी फैला सकते हैं समझ रहे हैं, ऑनलाइन भी फैला सकते हैं। जो कोई भी गीता के इस प्रवचन को सुनेगा उसको वायरस प्राप्त हो जाएगा। वायरस मतलब कृष्ण भक्ति का वायरस, ये इतना है। और अगर साक्षात बता सकें तो और भी अच्छी बात है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो यह द्वेष प्रकट हो रहा है, या प्रचार में सहायता नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग भले इस समय प्रचार नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे भी क्लास देने का प्रोत्साहन मिलता है। फिर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई वक्त सुनते हैं। अब किसको फायदा होगा हम नहीं जानते, लेकिन फायदा होगा जरूर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रुप में लोग जुड़ रहे हैं और लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे वायरस बढ़ रहा है। तो या तो हम प्रचार में करें, लेकिन हमेशा मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे ब्राह्मणों की आवश्यकता है जो इस ज्ञान को समझें और दूसरों को बताएं। ये हमें अपने पर लेना पड़ेगा इस टास्क को। और तीसरा जो पॉइंट था, चौथा पॉइंट ये था कि जो जो व्यक्ति द्वेष कर रहा है उससे हम द्वेष ना करें। मूर्ख है, उसे पता नहीं क्या बोल रहा है। हमारे संग कठिनाई ये है कि हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति को नियंत्रण है कि वो क्या सोचेगा और क्या बोलेगा। सोचते हैं सब, समटाइम्स वी थिंक दैट पीपल इन कंट्रोल ऑफ व्हाट दे आर स्पीकिंग एंड व्हाट दे आर थिंकिंग, बट दे आर नॉट। तो उस पर क्या रिएक्शन करना, अपना कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, माइक पे बोलिए।
इतने सारे कॉन्शियसनेस के लोग रहते हैं हमारे पास, मतलब
चेतना से युक्त, हाँ विभिन्न चेतनाओं से युक्त लोग रहते हैं। हाँ,
कितना भी कोशिश करते हैं रहने का, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है।
हाँ, तो हम अभ्यास कर रहे हैं, जैसे हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से इस मध्यम अधिकारी पे आने का प्रयास करना चाहिए हमको। हर व्यक्ति का हम एक्शन नहीं रोक सकते, लेकिन अगर अपने रिएक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारा क्या उसके प्रति, जिसके जिसने कार्य किया उसके प्रति क्या रिएक्शन, उस पर तो हमारा मतलब नियंत्रण है ना। यस, तो इस प्रकार से हम द्वेष से मुक्त होते हैं। इसका एक और अर्थ भी है, यह जानो कि मैं ही सभी वस्तुओं का बीज हूं, क्योंकि प्रधान जो सभी जीवों के भौतिक शरीरों का कारण है वह मेरा ही एक रूप है अर्थात मेरी विभूति है। प्रधान को शास्त्री जी समझाएंगे प्रधान क्या होता है, हमको समझ में नहीं आया तो आप बताइए।
प्रधान सबसे पहली इकाई है, मतलब बहुत जो मटेरियल नेचर है उसी प्रधान से ही पूरा वो प्रधान पहले फिर महातत्व बनता है, महातत्व ही सूत्री करना फिर ऐसे करके उसी का ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में ये पूरे पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार सब कुछ है।
आप ऐसे समझा रहे हैं जैसे सबको लोगों को पहले से पता है, आप ऐसे समझाइए कि लोगों को कुछ नहीं पता और वाकई लोगों को कुछ नहीं पता है, तो प्रधान का अर्थ क्या है आप बताइए।
माया है, माया के तीन पार्ट है, विद्या अविद्या और प्रधान।
गुड,
तो जो प्रधान है उससे ये पूरा घटपट बना है, घटपट मतलब जो दृश्य और अदृश्य चीजें हैं,
जो दिखाई पड़ रहा है और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो किस वस्तु से बना है, सीधे शब्द में कहे प्रधान से बना है। वो सारी वस्तुएं इस जगत में जो भी वस्तु आती हैं वे प्रधान से बनी है, समझ में आया। तो उस दृष्टि से प्रधान इस जगत का बीज है, समझ में आया। तो और वो प्रधान किसकी शक्ति है, भगवान की विभूति है।
सबसे मुख्य बात ये थ्री मोड्स का समयावस्था है,
प्रधान में रजगुण तमगुण और सतगुण 1:1:1 एक क्या बनेंगे मतलब एक बराबर अवस्था में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं, उसमें कोई
होड़ नहीं होता है,
होड़ नहीं होती है और उस कारण से सृष्टि नहीं होती है। और महतत्व प्रधान में क्या अंतर है,
महतत्व में अब काल तत्व आ गया है उसके कारण महतत्व में सत्वगुण की एक्चुअली प्रधानता हो जाती है।
हाँ, और उसके बाद क्रमशः तमगुण रजगुण उत्पन्न होते हैं फिर सृष्टि होती है। इतना समझ लो बहुत। तो प्रधान से ही सारी वस्तुएं आई हैं और प्रधान किसकी शक्ति है, भगवान। ठीक, इस विभूति के द्वारा मैं सभी का पालन करता हूं और इस निर्भरता के द्वारा वह पुष्ट होते हैं। किस निर्भरता के द्वारा, भाई हमारा शरीर चलाने के लिए भौतिक वस्तु में चाहिए, वे कहां से आई, प्रधान से आई हैं। तो हम इस प्रकार से भगवान पर निर्भर हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं जिससे सार असार का विवेक होता है। सार असार मतलब क्या होता है शास्त्री जी बताइए, सारा सार
सत्य जो भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की शक्तियां जो भगवान से संबंधित देखते हैं वो सत्य है, और जो वस्तु भगवान से संबंधित नहीं देख रहे हैं वो असत्य है।
हाँ ये बात है। और सार मतलब सार वस्तु क्या है, भाई मैं हूँ, भगवान है, भगवान की भक्ति सार वस्तु है, और बाकी दुनिया के भोग असार है, इनमें कुछ है नहीं, उसको असार कहते हैं। ठीक, इसका विवेक होना चाहिए। ठीक, जिनके पास शक्ति है उनमें मैं दूसरों पर विजय प्राप्त करने का और दूसरों से परास्त न होने का सामर्थ्य हूं। ये तेजस तेजस्वी नाम अहम का अर्थ है। आपने सुना होगा शौर्य और तेज, ये क्षत्रियों का गुण होता है ना। तो दो गुण है तेज में, एक दूसरों में विजय प्राप्त करने की शक्ति और दूसरे से ना हारने की शक्ति, इसको तेज कहा जाता है। ये तेज कहाँ से आ रहा है, भगवान से। जैसे आप जानते हो प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है, तुम मुझसे डर नहीं रहे हो, तो कह रहे जहां से आपकी शक्ति आ रही है वहां से मेरी शक्ति आ रही है। तात्पर्य पढ़िए शास्त्री जी, पढ़ना चाहेंगे।
कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं, कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं, पक्षी पशु मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं, पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से
कुछ चर हैं, चार नहीं होना चाहिए, चर हैं और कुछ अचर हैं। हाँ,
जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर, किंतु इस सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसे कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है।
ईश्वर और परम सत्य में क्या अंतर है,
ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर नियंत्रक, परम सत्य का मतलब है जो उनसे ऊपर कोई नहीं है और उन्हीं से सभी चीज आई है।
और उसका मतलब तो ईश्वर भी तो सब कुछ का स्रोत हो सकता है।
ईश्वर परम ईश्वर भगवान कृष्ण है।
हाँ,
छोटे छोटे ईश्वर और कोई भी हो सकता है।
हाँ, जो गॉड शब्द प्रभुपाद समझाते हैं, गॉड मतलब होता है कंट्रोलर ईश्वर, लेकिन ईश्वर कोई है इसका अर्थ ये नहीं है कि वह वस्तु जो इनको वह नियंत्रित कर रहा है वह उसी से आई हूँ। जैसे मैं इस हारमोनियम को नियंत्रित कर सकता हूँ, इस लैपटॉप को भी कुछ मात्रा में नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो लैपटॉप है यह मेरे से आया है, क्या ऐसा इसका अर्थ है। लेकिन भगवान न सिर्फ नियंता हैं अपितु सारी जगत की वस्तुएं भी उन्हीं से आई हैं, इसलिए उनको परम सत्य कहते हैं। इस बात को व्याख्या सुंदर माधव प्रभु करेंगे कि परम सत्य क्या है और ईश्वर क्या है, दोनों के भेद को बताएंगे। ये बात कठिन है, लोगों को समझ में नहीं आती, देखते समझ में आया कि नहीं। यस, ईश्वर का अर्थ क्या है?
ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे छोटे, जो कंट्रोलर है, नियंता।
कंट्रोलर, ठीक। और परम सत्य का अर्थ क्या है? नहीं पता, ध्यान तो चला गया था, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। किसी को समझ में आया? कुणाल प्रभु को समझ में आया परम सत्य का अर्थ? यस, ऑन कीजिए।
परम सत्य का अर्थ जिनसे सब कुछ आया है।
यस, जन्मादि अस्य यतः, यह जिज्ञासा, और ये जिज्ञासा करनी चाहिए। मानव जीवन इसी के लिए है कि हम जिज्ञासा करें कि वस्तुएं आई कहां से हैं, किसने इसको व्यवस्था करके रखा है। ये नहीं कि हम पशु की तरह केवल खाते रहें, ये सोते रहें, बच्चे पैदा करते रहें, रक्षा करते रहें। देखिए, बात आप लोग कई बार सुन चुके हैं, लेकिन जरा विचार कीजिए कि इस समय भारत में या पूरे विश्व में या सामान्यतः सभी लोग क्या केवल इन पार्श्विक वृत्तियों में ही नहीं लगे हुए? कभी वो सोचते हैं कि ये बीमारी आई कहां से? उस तरह से नहीं कि चाइना से और वहां से। क्यों उसका निर्माण हो रहा है, कौन दे रहा है, इसके पीछे कौन है, ये नहीं सोच पाते। नहीं सोच पाते ना, ये जगत को देख रहे हैं, सुंदर सुंदर सृष्टि देख रहे हैं, लेकिन ये कभी सोचते नहीं कि सुंदर झरनों का या और पर्वतों का निर्माण किसने किया है। तो ये जिज्ञासा इंसान ही कर सकता है, इंसान को करना चाहिए। मुझे तो यह भी संशय है कि क्या देवता भी इस बात की जिज्ञासा करते हैं। मुझे संशय है कि करते हैं कि नहीं करते, ये भोग में ही पड़े रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। और एक बात उस बड़ी आश्चर्य की लगती है कि जब अश्विनी कुमारों को दधीचि महाराज, दधीचि ऋषि ये ब्रह्म विद्या दे रहे थे, तब उनको द्वेष हुआ कि ब्रह्म विद्या आप क्यों दे रहे हैं। इंद्र को द्वेष हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आता इससे क्या दिक्कत थी उनको। इसका कुछ को उत्तर नहीं दिया, लेकिन इससे क्या दिक्कत थी कि अगर अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या मिल जाएगी तो क्या दिक्कत। तो ये ज्ञान बहुत गुही है, भले ही हमको बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्ञान क्या गुही नहीं है? ये पता है हमको चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आ रही है? देख के मालूम कर लेंगे हम? नहीं कर सकते। तो ये भगवान से आ रही है, ये बड़ा रहस्य है, और भगवान सबका पालन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं बहुत गुही ज्ञान है, पढ़िएगा। यस प्रभु, माइक पे बोलिए, अंत कीजिए।
हाँ, जो भी आपने तात्पर्य दिया दधीचि ऋषि के बारे में, तो हम लोग भी बहुत से भागवत कथा सुन रहे, ब्रह्म भगवान के बारे में जान रहे हैं, तो क्या कोई कोई ना कोई देवता तो हमसे जरूर?
नहीं, मैं नहीं कह सकता कि देवता जलते होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस परिस्थिति में ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहे थे और उन्हें आके मना किया, ये मुझे समझ में नहीं आता सर क्यों करते। ये बात भी मैंने सुनी है और पढ़ा भी है कि जब कोई भगवान के धाम जाना चाहता है तो देवता ईर्ष्या करते हैं। ध्रुव महाराज के प्रसंग में वो ऐसे बोलते हैं, मेरी मति घुमा दी और भौतिक विषयों को मांगने के लिए भगवान के प्रति उन्मुख कर दिया। ठीक, पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? यस, हाँ, कुछ पूछ रहे थे?
चंद्रमा की रोशनी तो सूर्य से आती है ना, रिफ्लेक्शन।
ठीक है, साइंटिस्ट की बात मानेंगे कि भगवत गीता की बात मानेंगे हम?
भगवत गीता की मान
तो बस ठीक है, मान लीजिए किसकी रोशनी कहाँ से आती। देखिए, चंद्रमा की रोशनी सूर्य से आती ये भी आप जानते नहीं हो, खाली साइंटिस्ट की बात मानते हो, और स्पेकुलेशन है।
ठीक है, कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है? परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है।
क्या कहा गया है भगवद गीता में? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। हम बार बार मैं बोलता रहता हूं ताकि आप लोगों की जो बुद्धि है वो शार्प रहे, जिनको वो श्लोक याद रहता है वो याद आता रहे, जीव भी आता रहे। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, आगे अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य एकांतस्य, ऐसे करके श्लोक है च।
अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है।
एक बात आपको लगती होगी, बात प्रभुपाद बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे भी मूर्ख हैं जो कहेंगे गीता शिव बाबा ने बोली थी, और दो चार हजार बार बोल देने के बाद उनके चेले विश्वास भी कर लेते हैं कि शिव बाबा ने बोली थी। जब झूठ को बार बार बोलते हैं तो सत्य लगता है, सत्य को बार बार बोलेंगे तो वो हृदय में धंसेगा। पढ़िए। नहीं, आप सोचते नहीं प्रभुपाद एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम भूल जाते।
वे मूल हैं, जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं।
सुंदर बात है, देखिए मूल पूरे पेड़ का, बाहर पेड़ दिख रहा है कि नहीं, दाएं तरफ देखिए ये तमल का पेड़ है, तो अब ये पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही हैं, इसका जड़ दिख रहा है, इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूल है। क्या जड़ नहीं दिख रहा है तो क्या हम ये कहें कि जड़ है नहीं? और क्या जड़ के बिना पेड़ जी सकता है? नहीं जी सकता है। जिस प्रकार जड़ के बिना पेड़ जी नहीं सकता है लेकिन जड़ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी प्रकार से भगवान इस पूरे जगत के मूल हैं और वही सबको रस प्रदान कर रहे हैं, पोषण प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उपमा दी जा रही है। यस,
इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में हुई है।
नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इसकी व्याख्या अनुपम कृष्ण प्रभु करेंगे। फिर से करवाऊंगा ताकि याद हो जाए, फिर से याद।
नित्यो नित्य नाम, भगवान नित्य हैं और जीव भी, खूब सारे जो जीव हैं वो भी नित्य हैं।
खूब सारे मतलब कितने?
अनंत
अनंत, हाँ ठीक।
चेतनस चेतना नाम, भगवान चेतन हैं और जीव भी चेतन हैं।
ठीक है।
एको बहु नाम, भगवान एक हैं और जीव कई सारे हैं, बहु नाम।
एको बहुनाम यह विदधाति कामान,
और भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं।
अकेले भगवान ही सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, पढ़िए।
वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता।
ये तो बहुत स्पष्ट बात है, ये तो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि जो दुष्कृतिवान है बुद्धि होते हुए भी भगवान को नहीं समझ सकते। अगर बुद्धि के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता तो जितने भी साइंटिस्ट थे वे भगवान को स्वीकार कर लेते, लेकिन वे स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वैसी बुद्धि भगवान देते नहीं है, क्योंकि उनका कुछ पुण्य नहीं होता। आप स्वयं अपने जीवन में देखेंगे जब भक्ति करते जाएंगे तो अकस्मात रूप से आपको शास्त्र और भगवान की बात अधिक समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि भगवान इस प्रकार की बुद्धि देते हैं कि वो समझ में आए। स्मरण हो रहा है बात, वो स्थिति याद है ना जब पहली बार गीता क्लास सुन रहे थे या डीवाई सुन रहे थे और कुछ समझ में नहीं आता था, ये समझ में आता था तो याद नहीं रहता था। परम सत्य की डेफिनेशन फिर से बताइए सुंदर माधव प्रभु, परम सत्य क्या होता है? ए, हेल्प नहीं करना, परम सत्य क्या होता है?
एक, आप समझ गए? एक ही होता सत्य एक ही होते हैं, एक ही सत्य है।
अब देखिए है ना, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्टोर नहीं किया, डिलीट हो गई फाइल तो धीरे धीरे समझ में आता है। तो आप ये बार बार अब आप देखिए कि क्या प्रभुपाद जी को बार बार आवृत्ति करने की आवश्यकता थी कि नहीं थी। इसी प्रवचन में हमने अभी चर्चा किया और भी कठिनाई हो रही है, कोई बात नहीं, ये होता है, हर एक के संग होता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अच्छे से जप कीजिए, अच्छे से साधना कीजिए, बार बार ग्रंथों को पढ़िए, तब धीरे 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 करके बात समझ में आती है। मेरे लेवल पर देखेंगे तो लगता है तो एक ही बार में समझ में आती है बात, लेकिन ऐसा मेरे को भी कई साल से भक्ति कर रहे हैं तो समझ में आती है। इसीलिए साधना की बहुत आवश्यकता है, तब हमारे हृदय शुद्धि होती है, बुद्धि शुद्धि होती है, तब इन बातों को हम धारण कर पाते हैं। मैं कहूं कि भाई आज आलू का दम 50 रुपए किलो हो गया है, पता है क्या बोला मैंने, याद है, ये बात याद रहती है। लेकिन परम सत्य की व्याख्या में कहूं कि परम सत्य वो है जो सभी का स्रोत है, क्या बोला मैंने,
सबका स्रोत है,
सबका स्रोत, सभी वस्तुएं सिवाई, तो कई बार रिपीट करते हैं तब ये बात समझ में आती है। क्या ये बात मैंने प्रवचन में भी नहीं बोली थी? लेकिन हम धारण नहीं कर पाते हैं, तो वो सभी के संग होता है, धीरे धीरे करके हम आगे प्रगति कर पाते हैं। हाँ,
यहाँ पे आप जो यहाँ जो प्रभुपाद जी इंटेलिजेंट लिख रहे हैं, ये इंटेलिजेंस का यहाँ पे क्या मतलब हुआ?
बहुत सुंदर है, बुद्धि का हमने अर्थ लिया था, सारा सार विवेक, क्या वस्तु सार है और क्या वस्तु असार असार है, मतलब तुच्छ है, क्या वस्तु श्रद्धेय है, पूजनीय है, मतलब किस वस्तु को हमें ग्रहण करना चाहिए, किस वस्तु को छोड़ देना चाहिए, वह
इसी में कंटिन्यूशन है प्रभु जी, क्या ये जरूरी है कि उसको बहुत ये सब टेक्निकलिटीज जो होती हैं शास्त्रों की उसको समझ में आनी चाहिए?
इतना तो समझ में आना चाहिए कि कृष्ण मेरे भगवान है और मुझे इनकी सेवा करनी है, यह सार वस्तु समझ में आना चाहिए ना।
जैसे कोई जैसे माता जी लोग होती हैं कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती,
हाँ तो उनको ये समझ में आता है कि कृष्ण भगवान है। देखिए माता जी को समझ में ना आए लेकिन प्रभु जी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी और माता जी का स्वभाव अलग है। माता जी को खाना बनाना आता है, प्रभु जी को खाना बनाना भी नहीं आता। तो अपने स्वभाव को प्रखर करना चाहिए, जो चक्कू हमारे पास है वो तेज होना चाहिए। माता जी लोगों को नहीं समझ में आता, मैं नहीं कह सकता किसी माता जी को समझ में नहीं आता,
बहुत लोग नहीं समझ,
लेकिन प्राय माता जी लोगों को सेवा करने में, ठाकुर जी का श्रृंगार करने में रुचि होती है, जब कर लेते हैं कीर्तन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कृष्ण भगवान है और सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु जी लोगों का स्वभाव होता है दार्शनिक चिंतन करने का स्वभाव होता ही है, तो उस स्वभाव को छोड़ देना यह तो उचित नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, जितना हम भगवान के महानता को समझते हैं उतना ही भगवान का आश्रय लेने की, भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ती है। भगवान ये बता रहे हैं ना कि इस ज्ञान को जो दूसरों को देता है वो मुझे बहुत प्रिय है, तो क्या उसको हमें समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या क्यों हमारे शास्त्री जी को दीजिए, क्यों भाई जब आप IIT की तैयारी कर रहे थे तो जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते थे थोड़े कठिन होते, इनको छोड़ देते थे कि आप सोचते थे कि इसको तो सीख ही लूं, हो सकता है IIT एग्जाम में आ जाए, क्या करते थे आप, अपना अनुभव बताइए।
अच्छे से बनाता था, नहीं मैं तो 2-3 बार बनाता था कि फास्ट एकदम वे में उस टाइम भी
हाँ, कर दूं। हम लोग सामान्य भाषा में कहेंगे माथा मारते थे, हम लोग माथा मारना समझते हैं कि क्यों नहीं समझ में आ रहा, कर यही एग्जाम में आ गया तो ये मेरी रैंक पे प्रभाव डाल देगा, यही तो करते थे ना। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि कोई तत्व समझ में नहीं आया भगवद गीता भागवत का तो छोड़ दें। अभी तो वृंदावन चंद महाराज बड़ा अच्छा बात बोलते, कहते हैं अगर इसमें माथा मारेंगे तो माया में माथा नहीं मारेंगे। अगर जिज्ञासा ये रहेगी कि भाई ये क्या बोला गया आज क्लास में, क्या बोला गया, इस पे विचार करें तो हम इस जगत की वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा नहीं करने वाले, और जिज्ञासा हमारी कभी बंद नहीं होती है। ये कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, हमेशा हमारे मन में जिज्ञासा रहती है आज क्या है वो क्या है। प्रभुपाद जिसको बोलते ही हैं बिना जिज्ञासा किए हम जिंदगी में नहीं जी सकते। जी सकते हैं, सुबह उठते ही जिज्ञासा होती है क्या टाइम हुआ कितना तो सोचते ही हैं, तो जिज्ञासा किए बिना नहीं जी सकते। तो उस जिज्ञासा को हमें ब्रह्म जिज्ञासा भगवत जिज्ञासा में परिणत करना है। मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आया तो उसमें प्रयास करना चाहिए। शास्त्री जी कुछ कह रहे हैं जो एकदम बुद्धू है वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकता है बस, और कुछ ना समझे लेकिन कम से कम सुने तो सही। और भगवान इस बात को गीता में बोलेंगे 13वें अध्याय में कि श्रुत्वा, सुनकर भी कोई भगवान का भजन करने लगा तो वह भी मृत्यु को पार हो जाएगा। तो ये कंसेशन किसके लिए है जो पढ़ नहीं सकता समझ नहीं सकता, लेकिन सुनेगा कब, जो पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं जब वह प्रवचन करें। जैसे एक भक्त मुझे बोलते हैं प्रभु जी मैं पढ़ नहीं सकता बल्कि मैं 4 घंटे सुन सकता हूं, तो सुनाने वाला कोई होना चाहिए ना। तो जिसके पास भगवान ने शक्ति दी है बुद्धि दी है अगर उसका उपयोग वह यहां नहीं करेगा तो ध्यान दीजिएगा कि वह बुद्धि का दुरुपयोग जरूर करेगा। मेरे को बुरिजन प्रभु ने कहा कि अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो आप योर इंटेलिजेंस विल किल यू, और कोई सॉफ्ट शब्द उपयोग नहीं किया उन्हें, तुम्हारी बुद्धि ही तुमको मार देगी, क्योंकि बुद्धि प्लानिंग करती रहती है कि नेक्स्ट भोग कब कैसे प्राप्त होगा, करती है कि नहीं, इंटेलिजेंस कॉन्स्टेंटली प्लानिंग हाउ टू गेट सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्यों भाई मानते हैं नहीं मानते हैं? अगर बुद्धि नहीं है तो इंद्रिय तृप्ति करने की कैसे दाल में छौंक मारें और उसमें और तड़का लगाएं, ये सब करता है ना, सिर्फ बुद्धि होती है वह इस प्रकार से प्लानिंग करता है। तो अगर बुद्धि शास्त्र में नहीं लग रही है वह इंद्रिय तृप्ति में लगेगी ही वह आपको मार देगी। तो इसलिए बुद्धि जिसके पास है उसका उपयोग उसे भगवान की सेवा में करना चाहिए। दूसरा मैं देख रहा हूं बहुत सारे भक्त मुझसे प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का आधार वह है शास्त्र से सुनना चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने उनको बोला कि इस कलयुग में कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, तो उस भक्त ने मुझसे पूछा कि क्या कोई शास्त्र में वर्णन है, तो तुरंत मैंने 422.39 कर्माशयम ग्रतिदमुत ग्रतियंत संतः शास्त्र का वर्णन हमें उनको बताया। तो लोग भ्रमित करने वाले हैं इसलिए आवश्यक है कि जिन लोगों के पास बुद्धि है वह इसका उपयोग भगवान की सेवा में करें। और इसको आप कृपया 12वें अध्याय में पढ़िएगा जब भगवान कहते हैं कि अपनी क्या है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशयः निवेश्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशयः। तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओगे तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे भी हम सातवें अध्याय में पढ़ने वाले हैं, ज्ञानी बहुत प्रिय है भगवान को, क्योंकि ज्ञानी केवल वस्तुएं समर्पित नहीं करता है, अपनी मन और बुद्धि भी भगवान को समर्पित करता है। तो इस प्रकार से भगवान को बहुत प्रिय होता है। अगर हमारे पास ज्ञान शक्ति है, बुद्धि है, तो उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए फल है, तो फल को सड़ने देंगे कि भगवान को अर्पित करेंगे? आप ये जो बाहर फूल देखते हैं सुबह, क्या सोचते हैं, सड़ने तो उनको ये भगवान को अर्पित करना है? तो ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, जो कुछ भी शक्ति हमारे पास है वो कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही। वाणी की शक्ति, बुद्धि की शक्ति क्या है? प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है वो दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। यस प्रभु, कुछ कह रहे थे? हो गया क्या प्रश्न? क्या था ऐसे
बता रहा था कि वो भी सीखना जरूरी है, मतलब जो जिसको कहते हैं कि टेक्निकल चीजें, मतलब डिटेल्स।
हाँ, उससे हमारा खुद का शुद्धिकरण होता है और हम लोगों को सही सही दिशा दे पाएंगे, समझ पाएंगे, है कि नहीं?
वो एक्चुअली संबंध ज्ञान के अंतर्गत आता है, जो हाँ। भगवान से जो रिलेटेड है।
भगवान क्या है, भगवान की शक्तियां किस प्रकार से कार्य कर रही है, जानने में बड़ा हमको रुचि होती। माइक बताइए।
रूपा जी, अपने ही नवे अध्याय के तात्पर्य भगवद गीता के में इस चीज को लिखते भी है कि ये वेद का है, आचार्यवान पुरुषो वेदः, कि मतलब से अगर भक्तों आचार्यों के संग में रहते हैं तो हालांकि व्यक्ति एजुकेटेड ना भी हो, फिर भी सारा जो ज्ञान जो साक्षात के लिए जरूरी है वो सब हृदय में स्फुरित हो जाता है।
बिल्कुल, तो कोई किसी को आचार्य तो होना पड़ेगा ना। हाँ, अगर सारे ही लोग मूर्ख हो जाएंगे तो आचार्यवान को होगा कौन? मेक सेंस? जो मूर्ख है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वह ना पढ़े ठीक है, लेकिन जो पढ़ना लिखना जानता है वह ना पढ़े तो वह तो गलत है ना। तो यही बात है कि हर व्यक्ति को भगवान ने एक प्रकार से योग्यता नहीं दी है, भिन्न भिन्न योग्यताएं दी हैं। अगर योग्यता दी है तो आपकी खुद की नहीं है, भगवान की कृपा से आई, उसको उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। ये दंते मैं इस बात को क्यों जोर दे रहा हूं कि कुछ लोग इस बात को लेकर के शास्त्र ना पढ़ने की प्रेरणा लोगों को देते हैं, और क्यों देते हैं पता है? ताकि आप उनको कंट्रोल कर सकें। अंधा यथांधे रूपनीम, अंधे रहे वो, नष्ट दृष्टि रहे, क्या सेवा है क्या सेवा नहीं है ये ज्ञान उनको ना रहे, आप बड़ी आसानी से लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। ये बात मेरी पास समझ में आती है? अगर लोगों को शास्त्र ज्ञान नहीं हो तो आप बड़ी आसानी से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा एक गधा है, गधा कन्विंस है कि अगर मैं बोझा नहीं उठाऊंगा तो मुझे घास नहीं मिलेगी, और उस गधे को समझाओ कि जंगल में बहुत सारी घास है, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, तो स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आवश्यक है कि कम से कम कुछ तो ब्राह्मण हो जो शास्त्र को समझें और दूसरे को समझाएं। तो मैं समझता हूं कि बातें स्पष्ट हो गई हैं। अगला श्लोक, दो श्लोक फिर कल करेंगे।